पूर्व पाठ में बताया गया था कि ग्रामम गतः ग्रामम गतमान इत्यादि प्रयोगों में क्या कृदंत जहाँ पर है गतः या गतमान उसमें क्या होता है कि गम धातु है और अक्तौ प्रत्यय है, तो अक्तौ प्रत्यय का अर्थ वहाँ विशेष होता है और गम धातु का अर्थ जो है वहाँ पर विशेषण होता है। विशेषण होने के बावजूद भी गम धातु का जो अर्थ है क्रिया, उस क्रिया के साथ ग्राम आदि कारक का अन्वय होता है ऐसा जो है इन्होंने बताया था। माने ये है कि क्रिया गौण हो या प्रधान हो उसके साथ जो है ना कारक का अन्वय होगा ही होगा, दूसरे के साथ कारक का कारक के साथ अन्वय नहीं होगा, ये बात पूर्व पाठ में बताई गई थी। आगे कहते हैं कि न च वृत्ति मात्रे समुदाय सकते है वक्ष्यमाणत्वात् तत्र अंतर्गता भावना पदार्थिक देश इति कथम तत्र अन्वय इति वाच्यम। ऐसा है कि वृत्ति शब्द व्याकरण में या शास्त्र में जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध है, वृत्ति के कई तरह के अर्थ किए गए हैं। यहाँ पर जिस संदर्भ में वृत्ति की बात आई है वो ये है कि पंचवृत्तयः कृत तद्धित समास एक शेष और सनाद्यंत धातु रूप, ये जो पांच हैं ये वृत्ति पद से कहे जाते हैं। तो इन पांचों वृत्तियों में क्या है कि समुदाय शक्ति मानी जाती है, दो तरह की शक्ति होती है, समुदाय शक्ति और अवयव शक्ति। इसको मैं समझाता हूँ अपने तरीके से। चाल अति ये चावल दाल और सब्जी अगर आप खाते हैं तो उसमें क्या है कि चावल का भी अपना टेस्ट है, दाल का भी अपना टेस्ट है और सब्जी का भी अपना टेस्ट है। उसमें एक एक अवयव की का टेस्ट है, समुदाय का टेस्ट नहीं है। भात का अपना टेस्ट, दाल का अपना टेस्ट, सब्जी का अपना टेस्ट। लेकिन वहीं खिचड़ी खाते हैं तो उसमें चावल का कोई अलग से टेस्ट नहीं है, दाल का कोई अलग से टेस्ट नहीं है, सब्जी का कोई अलग से टेस्ट नहीं है। उसमें उन तीनों का जो समूह है, समुदाय है, उस समुदाय का ही अपना टेस्ट होता है। ऐसे ही शब्द में भी होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें कि अवयव के अर्थ होते हैं, अवयव में शक्ति होती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें कि अवयव के अर्थ होते ही नहीं हैं, समूह का ही अर्थ होता है, समुदाय का ही अर्थ होता है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृत्ति मात्र में ये पांचों वृत्तियों में कृत तद्धित एक शेष समास और सनाद्यंत धातु, इस पांच तरह की वृत्तियों में समुदाय सकते है वक्ष्यमाणत्वात्। वक्ष्यमान यानी भविष्य में जो बताया जाने वाला है उसको कहते हैं वक्ष्यमान। तो इन वृत्ति मात्र में जो है समुदाय में शक्ति होती है, अवयव में शक्ति नहीं होती। माने प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है उस शब्द में ही शक्ति होती है, माने वह शब्द ही जो है अर्थ को बताने में समर्थ होता है, उसका जो अवयव है प्रत्यय अथवा प्रकृति वो अर्थ को बताने में सख्त नहीं होता है। तो इस तरह से वक्ष्यमान है, आगे हम बताने वाले हैं। तो तत्र अंतर्गता भावना पदार्थिक देशा, इस तरह से कृदंत जो है ग्रामम गतः में गतः या कृदंत है, इस या इसमें भी क्या है समुदाय में शक्ति होगी। माने गतः शब्द जो है गौ अ तो और विसर्ग, ये जो पांच वर्णों का समुदाय है इसी समुदाय में अर्थ बताने की शक्ति है। इसका जो अवयव है गम धातु और अक्तो प्रत्यय उसमें शक्ति नहीं है अर्थ बताने की। इस तरह से गतः में समुदाय में रहने वाला जो गम धातुर्थ भावना है वह भावना क्या हो गया तो पदार्थिक देश हो गया, वो पूरा पदार्थ नहीं हो करके वो पदार्थ का एक देश हो गया, पदार्थ का एक हिस्सा भर हुआ, पूरा पदार्थ नहीं हुआ। जबकि अन्वय करने के लिए नियम है कि पदार्थ पदार्थे न अन्वेति न तो पदार्थिक देशे न, कि पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है, पदार्थ के एक देश के साथ माने पदार्थ के एक टुकड़े के साथ अन्वय नहीं होता। तो यहाँ जो ग्रामम गतः में आपने बताया कि गतः में जो गम धातु का अर्थ है उसका अन्वय ग्राम कर्म के साथ होता है, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि तो गम धातु अर्थ जो है वो पदार्थिक देश है, तो पदार्थिक देश का अन्वय कैसे होगा ग्राम कर्म के साथ। इस तरह से प्रश्न उठाया गया, उसी को कहते हैं कि न वाच्यम, इस तरह का प्रश्न आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नित्य सापेक्षेषु एक देशे से भी, तात्पर्य मैं पहले समझा देता हूँ। ताकि हाँ ये नियम सही में है कि पदार्थ का पदार्थ में अन्वय होता है, पदार्थ का पदार्थ के एक देश में अन्वय नहीं होता, ये नियम सही में है। लेकिन ये नियम हर जगह लागू नहीं होता है, कुछ इस नियम का अपवाद भी है। वो क्या अपवाद है कि नित्य सापेक्ष जहां पर हो वहां पर ये नियम लागू नहीं होता। अब कहेंगे कि गुरुजी ये नित्य सापेक्ष क्या हुआ, तो नित्य माने हमेशा, सापेक्ष माने अपेक्षया सहितः सापेक्षा, अपेक्षा माने आकांक्षा। तो जहां पर नित्य आकांक्षा रहती है, एक पदार्थ की आकांक्षा अगर दूसरे पदार्थ के बिना अपूर्ण रहे तो उसको नित्य साकांक्ष माना जाता है। अब जैसे देखिए, अगर हम गुरु कहते हैं तो गुरु पदार्थ जो है वो शिष्य पदार्थ के प्रति साकांक्ष है, क्योंकि बिना शिष्य पदार्थ, शिष्य के कोई गुरु हो ही नहीं सकता। ऐसे ही पुत्र कहेंगे तो पिता अर्थ जो है वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना पिता के जो है पुत्र संभव ही नहीं है। अगर हम नाती कहते हैं, पोता कहते हैं, तो वह भी साकांक्ष शब्द है, क्योंकि पोता कौन है, पौत्र कौन है, तो पुत्र का जो पुत्र होता है वह पौत्र कहलाता है। तो इसका मतलब है कि पौत्र जो हो गया वो पुत्र के प्रति साकांक्ष हुआ, क्योंकि बिना, जिसके बिना जो संभव न हो उसको साकांक्ष कहा जाता है, नित्य साकांक्ष कहा जाता है। तो जो नित्य साकांक्ष स्थल है, नित्य सापेक्ष स्थल है, वहाँ के लिए ये नियम नहीं है, पदार्थ पदार्थे न अन्वेति न तो पदार्थिक देशे नाम। यहाँ पर जहाँ पर क्रिया और कारक की बात जो हमने की है, तो क्रिया और कारक भी परस्पर नित्य साकांक्ष होते हैं, क्योंकि क्रिया के बिना कारक का अस्तित्व संभव नहीं है और कारक के बिना क्रिया का अस्तित्व संभव नहीं है, ये दोनों नित्य साकांक्ष हैं। और नित्य साकांक्ष होने के कारण भले ही ग्रामम गतह में, गतह में एक टुकड़ा भर है गम धातु का अर्थ, एक देश है, फिर भी उसमें कारक का अन्वय होगा ही होगा। इसी बात को समझाने के लिए कहते हैं कि नित्य सापेक्षेषु, जो नित्य सापेक्ष स्थल होता है वहाँ पर एक देश से अपि अन्वय, वहाँ पर एक देश में, पदार्थ के एक देश में भी अन्वय हो ही जाता है। उदाहरण दिया जैसे देवदत्तस्य गुरुकुलम। अब यहाँ देवदत्तस्य गुरुकुलम में क्या अर्थ होगा कि देवदत्त जी, देवदत्त के गुरु का कुल, ये हुआ देवदत्तस्य गुरुकुलम। यहाँ पर देवदत्त पदार्थ का अन्वय जो है पूरे गुरुकुलम पदार्थ के साथ नहीं हो करके गुरुकुलम का जो एक देश है गुरु पदार्थ उसमें अन्वय होता है। ऐसा है कि यहाँ पर देवदत्त पदार्थ का अन्वय होगा गुरु पदार्थ में और गुरु पदार्थ का अन्वय होगा कुल पदार्थ में। ठीक है, क्या है क्रम? देवदत्तस्य गुरुकुलम में किसका अन्वय होता है? देवदत्त पदार्थ का अन्वय होता है गुरु पदार्थ में और गुरु पदार्थ का अन्वय होता है कुल पदार्थ में, ये सिद्धांत है। अब यहाँ गौर करिए कि गुरुकुलम में गुरु शब्द अलग नहीं है, यहाँ तो समास है ना, और समास होने पर जो है ना एक शब्द बन जाता है। तो गुरुकुलम ये जो पद है इसका एक ही जो पूरा पदार्थ होगा वो होगा गुरुकुल पदार्थ। तो अगर वो नियम हम हर जगह मानेंगे तो यहाँ भी देवदत्त का अन्वय किसके साथ होना चाहिए? गुरुकुल पदार्थ के साथ होना चाहिए। गुरुकुल पदार्थ का जो एक देश है गुरु उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये नित्य सापेक्ष शब्द है। देवदत्त क्या है? शिष्य है। तो शिष्य जो है और गुरु जो है ये दोनों नित्य सापेक्ष हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। नित्य साकांक्ष होने, देवदत्त की आकांक्षा गुरु जी में और गुरु जी की आकांक्षा देवदत्त नाम के शिष्य में है, इसीलिए यहाँ पर गुरुकुल पद है पूरा, उसका जो एक देश है गुरु उस पदार्थ में भी देवदत्त पदार्थ का अन्वय माना जाता है। इसी तरह से चैत्रस्य नप्ता, चैत्र का नाती, नप्ता माने नाती, नाती कहते हैं पुत्र के पुत्र को, नाती कहा जाता, नप्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर नप्ता माने क्या हो गया? पुत्रस्य पुत्रः। तो यहाँ और चैत्र कौन हो गया? दादा हो गया। तो ये जो चैत्र नाम के जो दादा हैं उसका अन्वय क्या होगा? पुत्र में होगा। और उस पुत्र का अन्वय जो है ना उस नप्ता में होगा, माने पुत्र के पुत्र में अन्वय होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये नित्य साकांक्ष स्थल है। तो चैत्रस्य नप्ता मतलब हो गया कि चैत्रस्य पुत्रस्य पुत्रः। तो चैत्र का अन्वय हो गया पुत्र में और पुत्र का अन्वय हुआ द्वितीय पुत्र में। इस तरह से पदार्थिक देश है यहाँ नप्ता में, फिर भी पुत्र पदार्थ में चेत पदार्थ का अन्वय होता है। तो इत्यादो इव अन्वय अभ्युपगमात्, इन सबों में जैसे अन्वय पदार्थ एक देश में मानते हैं, जैसे देवदत्त का गुरु पदार्थ एक देश में अन्वय मानते हैं, चेत्र पदार्थ का पुत्र पदार्थ एक देश में अन्वय मानते हैं, उसी तरह से अन्वय अभ्युपगम, अभ्युपगम माने स्वीकारात्, अन्वय का स्वीकार करने से यहाँ पर ग्रामंगत में भी जो है गमन पदार्थ एक देश में ग्राम पदार्थ का जो है अन्वय हो जाएगा। एवं भोक्तुम पाक भुक्त्वा पाक इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्, ताकि इसी तरह से पाक में जो पच धातु और घ प्रत्यय है, तो पच धातु का अर्थ जो है पाक में वह पदार्थ एक देश है, उस पदार्थ एक देश में भुक्तुम पदार्थ का अन्वय होगा, ऐसे ही भुक्त्वा पदार्थ का अन्वय पाक के पच धातु अर्थ एक देश में अन्वय होगा। इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्, यहाँ पर भी इसी तरह से देखना चाहिए। कुल मिलाकर के ये हुआ कि कारक का अन्वय हमेशा जो है क्रिया में ही होगा, वह क्रिया चाहे तिंगंत स्थल में हो चाहे कृदंत स्थल में हो। तिंगंत स्थल में जो क्रिया रहती है वह तो प्रधान रहती है, लेकिन कृदंत स्थल में अप्रधान रहती है, लेकिन अप्रधान होने के बावजूद भी चूंकि वह और पदार्थिक देश होने के बावजूद भी नित्य साकांक्ष होने के कारण, नित्य सापेक्ष होने के कारण कारक और क्रिया में परस्पर अन्वय हो जाता है। इस तरह से 19वीं कारिका की समाप्ति हुई और अब 20वीं कारिका को हम पढ़ेंगे। इसमें आगे कहते हैं कि अति प्रसंगम आसंक्य समाधत्ते, अति प्रसंग कहते हैं अति व्याप्ति को, माने जहाँ पर जो जो नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी अगर होने लग जाए तो उसका नाम है अति प्रसंग। तो अति प्रसंगम आशंका, अति प्रसंग की आशंका करके फिर उसका समाधान करते हैं क्या, तो कृत्वोर्था तुमुन बत स्यु इति चेत संति ही क्वचित अति प्रसंगोनोद्भाव्योभिधानस्य समाश्रयात्। ताकि कृत्वोर्थ प्रत्यय जो होते हैं, माने कृत्वसुच प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो त्वा तुमुन बत स्यु, त्वा प्रत्यय की तरह और तुमुन प्रत्यय की तरह मानना चाहिए। अभी कहा था ना भोक्तुम पाक भुक्त्वा पाक, तो इस समय में मैं ही कहा था कि पाक में जो अप्रधान क्रिया है उसके साथ भी भोक्तुम पदार्थ का अन्वय हो जाएगा। ऐसा मान लेने पर, ऐसा जो है इति चेत, ऐसा मान लेने पर संति ही क्वचित अति प्रसंग, यदि कहीं अति प्रसंग होता है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो भी अति प्रसंग न उद्भाव्य, इसमें अति प्रसंग की उद्भावना नहीं करनी चाहिए, अति प्रसंग की कल्पना नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम को स्वीकार नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए। क्यों? तो अभिधान से समाश्रयात, वहाँ पर अभिधान का आश्रयन कर लेंगे। ये अभिधान का आश्रयन क्या है तो इसको समझ लीजिए कि व्याकरण शास्त्र अगर कुछ सिद्धांत कुछ बात को बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो शास्त्र के अनुसार वैसा करेंगे, लेकिन अगर व्यवहार उसकी अनुमति नहीं देता है तो वहाँ पर हम शास्त्र सम्मत होते हुए भी उसका अनुपालन नहीं करते हैं। इसी को कहा गया यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न आचरणीयम, माने यद्यपि शुद्ध है किंतु लोक के विरुद्ध है तो वैसा आचरण नहीं किया जाता है। तो इसी आशय को इस कारिका में बताया गया है कि अगर हम अप्रधान क्रिया के साथ भी कारक का अन्वय स्वीकार करें और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो इस कारण से इस सिद्धांत को स्वीकार न करें, ऐसा नहीं है, अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसको हम अनभिधान मान करके समाधान कर लेंगे, ये कह देंगे कि चूंकि व्यवहार में ऐसा प्रयोग नहीं होता है इसीलिए इस तरह का प्रयोग नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे कि शास्त्र में जो बात कही गई है इस बात को नहीं मानेंगे, ये नहीं कहना है। अब इस बात को स्वयं आगे जो है व्याख्या में बताएंगे। फिर से एक बार कारिका की पंक्ति को देख लेते हैं कि कृत्वोर्था तुमन बत स्यु इति चेत, माने कृत्वसुच अर्थ वाले प्रत्यय को और को त्वा तुमन प्रत्यय की तरह मान लेने पर संति ही क्वचित अति प्रसंग, यदि कहीं कोई अति प्रसंग आता है तो न उद्भाव्या, तो उस अति प्रसंग को स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसकी उद्भावना माने उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। वहां पर क्या करना चाहिए, तो अनविधान का आश्रय करना चाहिए कि ऐसा इसलिए यहाँ नहीं होता क्योंकि अनविधान है, माने लोक में ये ग्राह्य नहीं है शास्त्र सम्मत होते हुए भी। अब आगे देखिए व्याख्या में जो ये कहते हैं उसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, आज का पाठ यहीं रखते हैं।